समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेशमा तिवारी। रेशमा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार वैष्णवी एंड गुड आफ्टरनून लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन एफएम गोल्ड एट 100.1 MHz and for you we have a selection of news, our discussion segment Dateline India, reports, capsules, business tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi unveils various youth-focused schemes worth over 62,000 crore rupees to boost education, skilling and entrepreneurship.
निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आज पटना में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
सेंटर इश्यूज एडवाइजरी नॉट टू प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस कॉफ एंड कोल्ड मेडिकेशंस टू चिल्ड्रन बिलो 2 years अमिड चाइल्ड डेथ्स इन 2 states।
जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले 3 दिन के लिए स्थगित।
World leaders welcome Hamas's decision to release all hostages held in Gaza and engage with US-led peace proposal.
और अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को पारी और 140 रन से हराया।
Vaishnavi, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today, we'll talk about World Animal Day. French poet and journalist Anatole France once said, "Until one has loved an animal, a part of one's soul remains unawakened." Yes, such is the unconditional love that you share with your pet. These animals help humans develop sensitivity and become more human.
जी बिल्कुल, हर साल 4 अक्टूबर को मनाए जाने वाला विश्व पशु कल्याण दिवस इन संवेदनशील प्राणियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। ये दिन पशु कल्याण के आह्वान के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन जानवरों द्वारा योगदान की जाने वाली जैव विविधता की समृद्ध टेपेस्ट्री का भी जश्न मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ती जागरूकता के बावजूद मानव कारणों की वजह से जानवरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें मुख्य रूप से वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और मानव अतिक्रमण के कारण उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण आज कई प्रजातियां खतरे में है। आज कई पशु प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं।
We can't ignore that animals play an important role in our lives. They not only provide support and enrich our lives, but also give companionship and make us better human beings. This day provides us an opportunity to serve animals and be a part of something special. The best part of this day is that everyone can celebrate it without any restriction of nationality, creed, religion, political belief or ideology.
तो रिश्मा, आखिर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड क्या है, इस पे भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार का एक वैधानिक और सलाहकार निकाय है। इसका उद्देश्य यह है कि पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देना और भारत देश में पशु कल्याण को बढ़ावा देना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। बोर्ड में अक्सर 28 सदस्य होते हैं जो 3 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ये सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि देश में पशु कल्याण कानूनों का पालन किया जाए और पशु कल्याण संगठनों को अनुदान भी प्रदान किया जाए।
Right, and let's now talk about the history of World Animal Day. The first World Animal Day was organized exactly 100 years ago in Germany by dog lover Heinrich Zimmermann. Since then, the holiday has spread throughout the world as a cause to raise awareness of animal welfare concerns. This year, the theme is Save Animals, Save the Planet. The theme serves as a reminder that animal welfare is not just a moral concern, but also a key component of ecological balance and human well-being.
श्रोताओं, पशु कल्याण सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि ये हमारे ग्रह के भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता यानी जीवन की अलग अलग किस्में और बदलाव प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। पशु जो प्रकृति के हिस्से में के रूप में काम करते हैं, इस विविधता को बढ़ाते हैं। वे परागण, बीज फैलाव, कीट नियंत्रण और यहाँ तक कि मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्र को चलाने में भी सहायता करते हैं। इसके अलावा पशु जंगलों में मृत पेड़ पौधों को सफाई करने और नई वनस्पति उगाने में भी योगदान देते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसलिए पशु कल्याण करना सिर्फ दया दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के नाजुक संतुलन को बचाने का एक जरूरी कदम भी है। ये सुनिश्चित करता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा, पानी और खाना सुरक्षित रहे। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसल के वास्तविक बिक्री मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 सितंबर को सागर जिले से किसानों के हित में यह भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की थी। यह योजना सोयाबीन उत्पादक किसानों को वाजिब मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बिकने पर अंतर की भरपाई सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और किसी भी हालत में किसानों का घाटा नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को पहले की तरह मंडियों में सोयाबीन बेचने की अनुमति होगी। यदि मंडी में फसल का औसत विक्रय मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो सरकार उसके अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करेगी। अगर फसल का मूल्य राज्य सरकार के घोषित औसत मॉडल भाव से भी कम है तो अंतर की राशि की भरपाई भी उसी अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परिक्रमा के लिए विपिन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
The dwellers of tribal head Sunabeda forest of Nuapara district are all eager to witness the Chhatar Yatra of Ma Sunadei, the local goddess of the area. Chhatar Yatra of Ma Sunadei is the most sacred and high-profile affair for the Chakotia Bhunjia tribe of Sunabeda. It is believed that the goddess showers blessings on the devotees who witness her Chhatar Yatra on the Kumar Purnima Utsav or the full moon day of the month of Ashwin.
Goddess Sunadei is the presiding deity of nearly 52 villages and hamlet of Sunabeda area. Ma Sunadei's annual festival is celebrated for 15 days in the month of Ashwin. Chhatar Yatra is the concluding rituals of the festival. On this auspicious day, sacred Chhatar of Ma Sunadei visit the area and give blessings to the devotee. Thousands of people from Kalahandi, Bargarh, Nabarangpur and Balangi district and the neighboring states come here to offer prayers and get the blessings of Ma Sunadei. Ma Sunadei is the goddess of nature and Chhatar Yatra is symbol of brotherhood, said retired professor and research person Dr. Phanindam Deo.
Chakotia Bhunjia is a primitive tribal group, protected scheduled tribe. Culturally, they are very conservative to retain their environment and society and culture. And accordingly, they worship nature and their main deity, Sunadei. They celebrate every year on this full moon day of this Dasehra. They celebrate this and this is a traditional festival for the Bhunjias. And they bring their chhatar, that is umbrella of the goddess, from the particular spot, and they worship in a natural manner. And all the people of that area, they come there, and it is a great festival for them.
According to Hindu mythology, in the Dwapara Yuga, Pandavas lived in this dense forest for a long time in their exile period. Once, Panduputra Bhima found Ma Sunadei in form of Linga in the Guda hill of Sunabeda sanctuary while farming. Ma Sunadei was first worshipped by Bhima. After Bhima returned from his exile the Kokosa Duma of the area worshipped her. Now the people of Chakutia Bhunjia community, a primitive tribe of the Gura Hill, have been worshipping her since ancient time. It is believed that with the blessings of Masunadi, human and the wild animal lives together in the dense forest without harming each other. Whether it is the fear of wild animal or diseases, Mother Sunadi always protects the forest dwellers. For Parikrama, this is Bismita Padhan, Akashvani Sambalpur.
और अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य की ओर ले चलते हैं। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 3,500 करोड़ रुपए आवास क्षमा कीजिए इसे दोबारा सुने करीब 3.5 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की एक गांव में बना आवास सबसे अनूठा है और इस योजना की प्रभावशीलता की मिसाल भी है। पेश है हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले की उसूर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत तर्रेम का आश्रित गांव है चुटवाही। इस गांव की रहने वाली 50 वर्षीय महिला हुंगी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल गया है। यह इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाला न सिर्फ पहला मकान है बल्कि इस गाँव का भी यह पहला पक्का मकान है। इस गाँव के लोग पिछले कई सालों से माओवादियों के भय और आतंक के साय में जी रहे थे। कुछ समय पहले यहाँ सुरक्षा बलों ने अपना शिविर स्थापित किया। राज्य सरकार ने इस गांव को नियत निल्लानार योजना के तहत शामिल किया। इस योजना का उद्देश्य लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। इस गांव में रहने वाले ग्रामीण माओवादियों के डर से पहले शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से हिचकिचाते थे लेकिन श्रीमती हुंगी आगे आई और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया। साथ ही सरकार की एक योजना के तहत उन्होंने राजमिस्त्री का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर अपने घर का निर्माण खुद ही किया। श्रीमती हुंगी का पक्का मकान अब न सिर्फ उनके गांव बल्कि आसपास के इलाके में भी प्रेरणा का स्रोत बन गया है। यह मकान यह साबित करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना देश के दुर्गम इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
GST Bachat Utsav, which was announced by Prime Minister Narendra Modi and commenced on 22nd of last month, is benefiting all sections of society. Today, our correspondent brings a report on the tax cut on commercial goods vehicles.
In a major relief for the logistic and transport sector, the government has reduced the tax rates on commercial good vehicles including trucks and delivery vans. The GST rate has been brought down from 28% to 18%, aiming to ease the operational cost for small and medium transport operators and boost the movement of goods across the country. This reduction will revive India's transport and logistics sector. Additionally, reducing GST slashes upfront capital cost of truck and lowering freight rate per ton kilometer. The move will revitalize the country's supply chain, improve export competitiveness. This rationalization under the next generation GST reforms will mark a significant step leading to cheaper movement of agri goods, cement, steel, FMCG and e-commerce deliveries. With Shivang Rohan for Akashwani News, Delhi.
Shri Mata Vaishno Devi Yatra will remain suspended from tomorrow to the 7th of this month due to inclement weather condition in Jammu and Kashmir. The decision has been taken keeping in mind the safety and well-being of the pilgrims. Devotees are advised to follow official updates issued by the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board through its website and other authorized communication channels.
और रेशमा खेल के मैदान की ओर रुख करते हैं और जानते हैं वहां के कुछ ताजा हलचल। दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद में हुए इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 146 रन पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 162 रन बनाए थे जबकि भारत ने अपनी पहली पारी 5 विकेट पर 448 रन बनाकर घोषित की थी और वेस्टइंडीज पर 286 रन की बढ़त हासिल की थी। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से खेला जाएगा।
In women cricket, our rivals India and Pakistan will face off tomorrow in a Women's World Cup match at R. Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka. The contest that promises high emotional stakes follows a string of recent India-Pakistan clashes in the Men's Asia Cup. Now it's the women's turn to take center stage. India have dominated Pakistan in women's cricket, winning 24 of their 27 matches across formats. All three of Pakistan's wins have come in the shorter T20 format.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
Today is the birth anniversary of well-known freedom fighter and revolutionary Shyamji Krishna Varma. He was born on the 4th of October, 1857 in Manvi, a port town in the formerly princely state of Kutch in Gujarat. After completing his schooling in Mumbai, he studied at Balliol College in Oxford. In 1881, the then Secretary of State for India sent him to represent the learning of his country at the Berlin Congress of Orientalists. There, he not only read his own paper on the subject of Sanskrit as the living language of India, but also read a patriotic Sanskrit poem and translated it into English for the audience.
In 1885, he returned to India and enrolled himself as an advocate of the Mumbai High Court and started his practice. During his stay in India, Shyamji was very much impressed with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. He initiated a very friendly relationship with Tilak, which inspired him to the nationalist movement.
Shyamji settled in London after his return to England in 1897. In 1905, he was barred from practicing law by London's Inner Temple on charges of sedition for writing against the colonial government. Varma was posthumously reinstated by the Inner Temple in 2015. After the Inn's governing council noted that it did not receive an entirely fair hearing.
He founded the Indian Home Rule Society in London in 1905, which was aimed at promoting self-rule in British India. He also founded the India House in London in the same year, which was a base of revolutionary activities against the British rule. Varma edited the monthly Indian Sociologist, an organ of freedom and of political, social and religious reform.
In 1914, Varma moved to Geneva and spent the rest of his life there. Shyamji Krishna Varma died on March 30, 1930, with the wish that his ashes be returned to his motherland after it has attained freedom. In August 2003, Gujarat Chief Minister Narendra Modi went to Switzerland and got back the ashes of Shyamji Krishna Varma and his wife.
Asti mara hind ma padra vijayi aashe
he asti mara hind ma padra vijayi aashe
gujarat na ya rashtra bhakto no amar itihas se me ho amar itihas.
Today is also the birth anniversary of freedom fighter Subramanya Shiva. He was born on 4th October 1884 in Madurai. He was the first person to be imprisoned in Madras by the British over sedition charges. Shiva was one of the greatest nationalists of the Tilak era. Shiva persuaded many young men to join the freedom movement by establishing Dharma Paripalan Samaj. This led to his 6 years of severe imprisonment by the British in 1908.
Through the monthly journal Gyanabhanu, he edited and published, Shiva kept the freedom struggle alive while in prison. He passed away on 23rd of July 1925. To commemorate Shiva's contribution to the freedom struggle, former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalitha inaugurated a memorial in his honour in Paparapatti in 2012.
Today is also the birth anniversary of a freedom fighter and revolutionary, Thirupur Kumaran. He was born on 4th October 1904 in Chennimalai, which is presently Erode in Tamil Nadu. While the independence movement was gaining momentum in the country, Kumaran too found himself influenced.
Inspired by Mahatma Gandhi's principles and ideals, Kumaran began to participate in the demonstrations announced by Bapu.
When Gandhiji led a demonstration in Bombay in 1932, the British decided to arrest him. There were riots and protests against his arrest all over the country. The protests had people carrying out the national flag, which was banned at the time, in honor as well as in revolt. One of the participants holding the flag was Tirupur Kumaran. When the British police started lathi charge on the protesters, Kumaran did not leave the premises. The cops thrashed the protesters, including Kumaran, who fell but did not let the flag touch the ground. The 27-year-old freedom fighter succumbed to his injuries on 11th January 1932.
And let's recall Sepoy and Honorary Captain Baba Harbhajan Singh, an Indian Army soldier who served from 30th June 1965 to 4th October 1968. He's said to serve the Indian Army even after his death by coming in dreams of soldiers and telling them the plans of their enemies. There is a temple dedicated to him in East Sikkim. Harbhajan Singh was born into a Sikh family on 30th August 1946 in the village of Sardana. He completed his preliminary education at a village school and then matriculated from DAV High School in Patti, Punjab in March 1965. He enlisted as a soldier in Amritsar and joined the Punjab Regiment. Baba Harbhajan Singh died in 1968 near the Nathula Pass in eastern Sikkim, India. A board besides his shrine describes that he died after falling into a nala while escorting a mule column from Tukula to Dongchuila.
आज 4 अक्टूबर को भारत की एक प्रमुख प्रशासिका सरला ग्रेवाल की जन्म जयंती है. सरला जी ने हंसराज महिला विश्व महाविद्यालय से स्नातक किया और 1952 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में शामिल होकर देश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी बनी. 1956 में वे शिमला की पहली उपायुक्त बनी जो पूरे देश में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्ति प्राप्त कर उन्होंने विकासशील देशों में सामाजिक सेवाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर विशेषज्ञता हासिल की. उनकी करियर की प्रमुख उपलब्धियां उल्लेखनीय है. 1963 में पंजाब की स्वास्थ्य सचिव के रूप में सेवा दी, जहां उनके नेतृत्व में राज्य को राष्ट्रीय परिवार कल्याण के लिए 4 पुरस्कार मिले. 1985 में राजीव गांधी की प्रधान सचिव रहीं. विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ में प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में कार्य किया तथा बाद में वे मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं. सरला जी का जीवन महिलाओं को प्रेरित करने वाला एक अमूल्य उदाहरण है.
And listeners, October 4 is also the death anniversary of S.K. Ojha, also known as Shubhkaran Ojha. He was a film director, actor and story writer born on 16 October 1921 in Hathras, Uttar Pradesh. He made his directorial debut with Doli in 1947. And later he directed many films including Nayi Raat Aadhi Raat, Nayi Deep, Adhi Raat and Halchal. He also wrote the story of the film Upasana, which released in 1971.
आज हम याद कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता और अभिनेता इदिदन नागेश्वर राव को, जिनकी आज पुण्यतिथि है. कॉलेज के दिनों में उनमें अभिनय और थिएटर में रुचि जागृत हुई. उनका करियर छोटी भूमिकाओं और डबिंग से शुरू हुआ. के विश्वनाथ जैसे निर्देशकों के साथ सहयोग कर उन्होंने पूर्णोदय मूवी क्रिएशंस की स्थापना की, जिसके तहत शंकर भरणम, सागर संगम, स्वाति मुथ्यम जैसी क्लासिक फिल्में बनी जो राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मानित हुई. उन्होंने 5 नंदी पुरस्कार जीते तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामांकित हुई. इदिदा जी का योगदान तेलुगु सिनेमा को कला और सामाजिक संदेशों से समृद्ध करने वाला है.
Let's recall Ramchandra Purushottam Marathe also. He was known as Pandit Ram Marathe. He was a Marathi music director, singer and actor on stage and in films. He joined Sagar Film Company in 1933 and acted in Mehboob films like Manmohan, Jagirdar and Vatan. Subsequently, he joined Prabhat Film Company in 1935 and acted in Gopalakrishnan under the direction of Sri V. Shantaram. He was with Prabhat till 1940 and acted in a number of Prabhat films, notably Aadmi in Hindi and Manush in Marathi. He acted as child prodigy or actor in more than 16 films. Not only that, he was the disciple of Vilayat Hussain Khan, the maestro of Agra Gharana of Hindustani classical music, Master Krishna Rao Pulambrikar and others. Through Master Krishna Rao, he developed his Khayal style, which had elements of different gharanas such as Jaipur, Gwalior and Agra. He received several accolades, including the Sangeet Natak Academy Award in New Delhi for Marathi stage music Natya Sangeet in 1988 from Honorable President of India, Sri Venkata Raman.
आज हम याद कर रहे हैं बंगाली संगीत जगत की अमर गायिका संध्या मुखर्जी को, जिनको गीताश्री के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1931 को कोलकाता के धाकुरिया में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति आकर्षित संध्या जी ने प्लेबैक सिंगिंग में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं में 10,000 से अधिक गीत गाए, जिनमें रविन्द्रनाथ टैगोर के भजन और नॉन फिल्म एल्बम भी शामिल है। उनकी उपलब्धियों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए 2 बार सम्मानित होना प्रमुख है। 1970 में गीत ओरे सकोल सोना मुलीन और जय जयंती के लिए, 2011 में पश्चिम बंगाल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बंग भूषण, 1999 में भारत निर्माण लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2018 में पद्म भूषण से नवाजी गई। संध्या जी का स्वर आज भी बंगाली संगीत को जीवंत रखता है, तो आइए सुनते हैं उनका ये लोकप्रिय गीत।
मधुमालती डाके आए फूल फागुनेर खेलाए, मधुमालती डाके आए फूल फागुनेर खेलाए, ज्योति कामिनी कत कथा, ज्योति कामिनी कत कथा, गोपने
Talking of birthdays, cricketer Rishabh Pant is also celebrating his birthday today. Born in 1997, Rishabh plays for India, Delhi and the Delhi Capitals in the Indian Premier League. In December 2015, he was named in India's squad for the 2016 Under-19 Cricket World Cup. On 1st February 2016, he hit an 18-ball 50, the fastest at his level. He made his 2020 international debut for India in January 2017, his test debut in August 2018, and his one-day international debut in October 2018. In January 2019, Pant was named the ICC Emerging Player of the Year at the 2018 ICC Awards. He has shown great resilience by overcoming health challenges after a road accident in 2022 and is continuing to do a great show for the Indian side. And today is also the birthday of 73-year-old Shailendra Singh, a playback singer and actor. He sang several Hindi and few Marathi songs during the late 70s and early 1980s. Shailendra Singh had many hit songs to his credit. Raj Kapoor gave him a break when he made him sing for Bobby, and he made the most of this opportunity.
Main shayar to nahi, main shayar to nahi, magar hasi जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे।
Indian actress and celebrated dancer Sandhya Shantaram was cremated today at the Shivaji Park Crematorium in Mumbai. She passed away yesterday at the age of 87. Sandhya rose to fame with filmmaker V. Shantaram's classic Navrang, with the song Are Jare Hat Natkhat becoming especially popular. She went on to earn acclaim for her performances in films such as Jhanak Jhanak Payal Baje, Jal Bin Machli Nritya Bin Bijli, Do Aankhein Bara Haath, Amar Bhupali and Pinjara. Maharashtra's Cultural Affairs Minister Ashish Chellar paid tribute to the veteran artist, recalling her contribution to Indian cinema and dance.
आधी रहने दो मन की अभिलाषा आधे झलके नयन आधे झलके नयन अभी पलकों में भी है बरसात आधी
समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का
नमस्कार